পুজো আমি দেব বর, গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর, মাতাজি লোক কন্যারে কহে, অ্যাড্রেসিং দি গার্লস, দি লর্ড উড সে আমা পূজ ওয়ার্শিপ মি, আমি আই দেব শ্যাল গিভ বর নাইস হাজবেন্ড, গঙ্গা দি গঙ্গেজ, দুর্গা গডেস দুর্গা, দাসী মেড সার্ভেন্ট, মোরা মাই, মহেশ লর্ড শিবা, কিঙ্কর সার্ভেন্ট। Translation and purport by Divine Grace is Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki. Addressing the girl, the Lord would say, worship me and I shall give you good husband and good benediction. The Ganges and Durga, goddess Durga, are my maid servants. What to speak of other demigods, even Lord Shiva is my servant. Purport. There is a misconception about the Hindu religion among people who profess other religion such as Christian and Muslim, who say that in Hindu religion there are many gods. Actually, that's not fact. God is one, but there are many other powerful living entities who are in charge of different departments of administration. They are called demigods. All the demigods are servants who carry out the order of the Supreme Lord, the personality of Godhead. Lord Chaitanya Mahaprabhu discloses this fact in his childhood. Out of ignorance, sometime people worship the demigod to receive some particular boon. But actually, one who become a devotee and worshiper of the Supreme Personality of Godhead does not need to go to the demigod for any benediction, because he obtains everything by grace of the Supreme Lord. In Bhagavad Gita 7:20-28, therefore, condemns such demigod worship. Kamestar hitai jnana prapante anna devata tam tam niyamam asyaste prakritaya niyata swaya. Only persons whose intelligence is lost and who are mad with lusty desire worship the demigods and follow the particular rule and regulation of worship according to their own natures. Esam tantakatam papam jananam punya karmanam te dvandamo nirmukta bhyante mam drhavrata. But persons who are free from all sinful activity and the duality of delusion engage themselves in the worship of the Supreme Personality of Godhead with determination. Only the less intelligent worship the demigod for their various purpose. The most intelligent worship only the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Sometime we, the member of Krishna consciousness movement, are accused of not approving the worship of demigod. But how can we approve of this when it is condemned by Lord Chaitanya and Lord Krishna? How can we allow people to become foolish and hrita jnana, bereft of all intelligence? Our propaganda is simply meant to enable intelligent people to understand the distinction between matter and spirit and understand the Supreme Personality of Godhead, who the whole spiritual identity. That is our mission. How could we mislead people in worshipping so-called gods in material bodies within this material world? Our position of not allowing worshipping of many hundreds of demigods was confirmed by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Even in his childhood, Sri Narottam Das Thakur has sung in this connection, Anna Anna Deva Sraya Nahi Tomara Kahinu Bhai Ei Bhakti Parama Karan. To become a staunch, pure devotee of the Supreme Personality of Godhead without deviation, Ananya Bhakti, one should not divert his attention to the worship of the demigod. Such control is a symptom of devotional, pure devotional service. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurjini Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Bhutair Mahadvi Aima Puro Vibho Nirmaya Sete Adamusa Purusam Bhukte Gunanso Dasaso Dasatmakam Solam Krishistam Bhagavan Bachansime Gurave Gaurachandraya Radhikayai Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhayevacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhavaradhika Madhuri Aswadai Sukhakaj Jayati Krishna Chaitanya Kali Prakate Brajaraj Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो कल कहाँ तक कथा सुने थे? किसी को याद है? हैं? हैं? हाँ, महाप्रभु मिट्टी खाए थे और मायावाद सिद्धांत को अपने माता के सामने टेस्ट करने के लिए माता को कहे कि भोजन भी मिट्टी है और मिट्टी भी मिट्टी है। यशोदा माता खोई और संदेश सब दी थी, महाप्रभु नहीं खाए और मिट्टी खा रहे थे। और जब देखे कि माता का वैष्णव विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में कितना उनका घनिष्ठ निष्ठा है, तब उन्होंने कहा कि मैया, ये बात आपने पहले क्यों नहीं कहा? यदि पहले कही होती तो मैं मिट्टी नहीं खाया होता। ठीक है, आज के बाद जब भूख लगेगा तो मैं आपका अस्तन पान करूंगा। और इस प्रकार कह करके भगवान चैतन्य महाप्रभु यशोदा मैया का, सची माता का अस्तन पान करने लगे। कुछ समय की बात, इस प्रकार से गौरचंद्र विभिन्न प्रकार का लीला कर रहे थे। एक दिन की बात है, कुछ समय के बाद अतिथि भी प्रेर अन्न खाइला तीन बार, पाछे गुप्त से विप्रे करिल निस्तार। एक समय एक ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण के द्वारा भगवान को भोग लगाने के लिए जब भोजन तैयार करते थे तो महाप्रभु आकर के तीन बार एक के बाद एक, एक के बाद एक उनको भोजन को जूठा करते गए और अंततः चैतन्य महाप्रभु अपने स्वरूप का दर्शन कराए और इस रहस्य को बतलाए कि वे किस कारण से आए हैं, और इस प्रकार से उस ब्राह्मण का उद्धार किए। तो वह कथा चैतन्य भागवत में बृहद रूप में वर्णन किया गया है, तो हम लोग चैतन्य भागवत से यह कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक तैत्रिक ब्राह्मण, तैत्रिक मतलब तीर्थाटन करने वाला उदासीन ब्राह्मण, वह प्राय परिभ्रमण करते रहते हैं। जैसे ये चार प्रकार के सन्यासी होते हैं, जैसे कुटीचक, बहुधक, हंस और परमहंस। कुटचक वह कहलाते हैं सन्यासी जो घर गृहस्थी छोड़ करके घर से बाहर कुछ दूरी पर खेत में एक कुटिया बना लेते हैं, मड़ई बना लेते हैं, कुटिया बना लेते हैं और वहीं निवास करते हैं। और उनके खाने पीने का व्यवस्था जो उनके घर से होता है, घर से डेली आता है खाने के लिए, तो उनको कुटचक कहते हैं। और बहुधक जो होते हैं वो उदासीन कहलाते हैं। बहुधक घर गृहस्थी से उदासीन हो गए हैं, घूम रहे हैं और जो भी मिल जाता है मुख्य करके वो अन्न संग्रह नहीं करते हैं। किसान लोग खेती किए, फसल काटा गया तो कुछ न कुछ अन्न गिर जाता है खेत में, तो उस खेत के अन्न को लेकर के अपना जीवन निर्वाह करते हैं। या वृक्ष से यदि फल कोई गिर जाता है, पत्थर मार करके नहीं तोड़ते हैं, है? पका हुआ अमरूद का फल है, आम है, वो पत्थर नहीं मारते हैं। यदि पक करके गिर गया है तो उसको उठा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ये कहलाते हैं बहुधक या उदासीन। उसके बाद होते हैं हंस, जो समझ गए हैं आत्मतत्व को, दूध का दूध और पानी का पानी जो कर देते हैं वो कहलाते हैं हंस। और जो परमहंस होते हैं उनके संबंध में वर्णन किया गया है, यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गेह य ब्रजिस्स नरोत्तम। उन नरोत्तम कहलाते हैं। कहते हैं यह स्वकात, स्वकात मतलब अपने से, अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार सुन करके समझ कर करके या
बड़ी सुंदर पत्नी थी, उसका देहांत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चे मर गए, किसी प्रकार से वैराग उत्पन्न हो जाए, यह स्वकार परतो बेह या दूसरे के कहने से। हरे कृष्ण मंदिर में आ गए और खूब, हरादास कहां है, वो डेली मिसिंग करता है। हरादास पकड़ लिया और जबरदस्ती उनको अमृत पिलाने लगा, जबरदस्ती या प्रचार करके द्वारा। यह सौकात परतो बेह, दूसरे के द्वारा कहने पर, यह सौकात परतो बेह जात, मतलब उत्पन्न हो जाता है निर्वेद, भौतिक बंधन से मुक्ति, जो मुक्त हो जाता है। यह सौकात परतो बेह जात निर्वेद आत्ममान, और जो सेल्फ रियलाइजेशन पर स्थिर होता है आत्ममान, हृदय कृतवा हरिम गेह, हृदय मतलब हृदय में, कृतवा मतलब स्थापित कर करके, हरि मतलब भगवान को, गेह मतलब घर द्वार सब छोड़ छाड़ कर करके भगवान को जो हृदय में स्थापित करता है, प्रव्रजस्व नरोत्तम, और घूम घूम करके जा करके परिभ्रमण करके, परमहंस परिव्राज का आचार्य, परिभ्रमण कर करके जो प्रचार करता है वो नरोत्तम कहलाता है। तो ये तैतृक जो ब्राह्मण थे, ये चारों सन्यासियों में से ये उदासीन थे, ये बहुदक थे, जाते थे जहां कुछ मिल जाता था। तो एक दिन वही तैतृक ब्राह्मण घूमते घामते नवदीप आए, मानो महाप्रभु उन्हें बुला रहे थे, खींच करके ला रहे थे, आए जगन्नाथ मिश्र के यहां आए। जगन्नाथ मिश्र उन्हें अपना अतिथि समझ कर करके उनका सत्कार किए, जैसा कि वर्णन किया गया है, अतिथि सत्कार के तीन लक्षण हैं, आसन देना, पद प्रक्षालन करना और सुमधुर वचन बोलना। तो इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र उनको सुव्यवस्थित कर कर करके अब वे पूछे हाल चाल कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से आए हैं। विप्र बोले आमी उदासीन देशांतरी, चेतेर विक्षेप मात्र पर्यटन करी। कहते मैं तो एक उदासीन सन्यासी हूँ, मैं देश विदेश में परिभ्रमण करता रहता हूँ, उसमें वीजा का प्रॉब्लम नहीं था, कोई कहीं जा सकता था, परिभ्रमण करता हूँ और भगवान के खोज में लगा हूँ, इसलिए घूम घूम करके भगवान का खोज कर रहा हूँ। प्रणति करिया मिश्र बोले न बचन, जगतेर भाग से तुम्हार पर्यटन, विशेषतः आज ही हमार परम सौभाग्य, आज्ञा देह रंधेर न करिया गिया कार्य। कहते हैं कि आज मेरा सौभाग्य है कि अहो भाग्य कि आप हमारे घर पर पधारे हैं, यदि आप किसी दुख न हो तो आप मुझे आज्ञा करें और आपके भोजन पानी का मैं व्यवस्था करना चाहता हूं। देखिए पहले जमाने में जगन्नाथ मिश्र उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, अरे सन्यासी आए हुए हैं। पहले जमाने में ब्राह्मण लोग अपने हाथ से भोजन बनाते थे, वैष्णव गण अपने हाथ से भोजन बनाते थे, ब्राह्मणों के घर में बनाया हुआ भी नहीं खाते थे, अपने हाथ से बनाते थे। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तो कहना ही क्या है, ब्राह्मणों के घर का बनाया भी नहीं खाते थे। आजकल के हम लोग जो हैं वैष्णव सन्यासी लोग होटल में भी खा लेते हैं, चलता है, है? कौन सो रहा है, रात के का पहरा दे रहा था क्या, सिक्योरिटी इंचार्ज था रात को क्या? तो ये उच्च कोटि की हमारी सभ्यता संस्कृति थी। जगन्नाथ मिश्र जिनके घर पर ब्रजनंदन श्याम सुंदर साक्षात आए हुए हैं, जगन्नाथ मिश्र और कोई नहीं बल्कि नंद बाबा हैं, उनके भी हाथ का नहीं, तो वे कहते हैं कि यदि आप दुख न माने तो आपके खाना पीना का व्यवस्था हम कर दें। विप्र बोले कर मिश्र जे तुम्हार इच्छा, जे इच्छा तुम्हार हरि से करिला मिश्र दिव्य उपहार। इस प्रकार से उन्होंने कहा ठीक है, जब आपकी यही इच्छा है तो आप व्यवस्था कीजिए और मैं रंधन करूंगा, मैं भोजन बनाऊंगा। और ब्राह्मण संत तब झटपट जगन्नाथ मिश्र वहां से गए, सब भोजन का चावल घी नहीं सॉरी आटा घी गुड़ जो भी जरूरत है सब ला करके दे दिए और तुरंत उस स्थान को लिपाई पोताई कर करके स्वच्छ किए। और इस प्रकार से वह ब्राह्मण रंधन किया, और रंधन करने के बाद जो भी ब्राह्मण वैष्णव होता है भोजन खाने से पहले स्वाभाविक है कि भगवान को भोग लगाते हैं, बिना भोग लगाए तो खा नहीं सकते हैं। आजकल तो होटल में भी जाते हैं वहाँ भी भोग लगा लेते हैं, श्री विष्णु श्री विष्णु या शरीर विद्या जाल वहाँ ही बोलते हैं। ये प्रैक्टिकल है, हम लोग करते हैं, लेकिन सीखना चाहिए इससे कि एवॉयड करें जितना हो सके, एवॉयड करें जितना हो सके, न खाएं तो अच्छा होगा। बल्कि कल हम लोग किसी घर में प्रोग्राम के लिए गए थे तो हमारे भक्त लोग नहीं खाना चाहते थे कुछ लोग, तो ये बल्कि नहीं हम लोग खा करके मंदिर से आए हैं, वहाँ प्रसाद 4 बजे होता है, तो उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर में जो रसोईया महाराज है ना वो ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने बनाया है, मतलब हम लोग नहीं बनाए, वो लोग बनाए हैं, शुद्ध बना हुआ है, ऐसा कह रहे थे। एनीवे इस प्रकार से तैतृक ब्राह्मण भोजन बनाए और भगवान को बुलाए। सर्वभूत अंतर्जामी श्री सची नंदन मने आचे विप्रेर देवेन दर्शन सर्वशक्तिमान सर्व अंतर्जामी सबके हृदय में विराजमान परमात्मा के रूप में गौर हरि सचिनंदन समझ गए कि यह ब्राह्मण मुझे बुला रहा है, और गौर हरि के मन में इच्छा हुई कि मैं आज इस ब्राह्मण को दर्शन दूंगा, इसको मैं दर्शन दूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर इसके तात्पर्य में बतलाए हैं कि ऐसे ब्राह्मण को चैतन्य महाप्रभु दर्शन क्यों देते, क्यों दर्शन देते, इसलिए कि वह ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र को प्रसन्न किया। जगन्नाथ मिश्र की इच्छा थी कि मैं उनके भोजन का व्यवस्था कराऊं, और ये ब्राह्मण तो पहले कह दिया कि मैं तो पर्यटन करता हूं, फल फूल खाकर आ जाता हूं, ये सब नहीं खाता हूं, लेकिन फिर भी जगन्नाथ मिश्र के कहने से वो स्वीकार किया और भोजन बनाने के लिए तैयार हो गया। तो जगन्नाथ मिश्र बड़े खुश थे कि हमारे घर में कोई वैष्णव कोई सन्यासी ब्राह्मण भोजन कर रहा है, गृहस्थ लोग खुश होते हैं। तो महाप्रभु इससे बहुत खुश हो गए। भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्रसन्न, जो मेरे भक्तों को अप्रसन्न कर करके मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करता है वो मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है। जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो जस्या अप्रसादाद नगति कुतोपी। कृष्ण गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण ढूंढते रहते हैं भक्तों को, कोई भक्त का नाम पुकारता है तो कृष्ण तुरंत दिखते हैं। जैसे हम लोग डेली यहां पर प्रणाम करते हैं चेतन महाप्रभु को, राधारास बिहारी को, सीताराम जी को, तो यदि हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र करें पहले, नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे में गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाद, तो प्रभुपाद जी का हम प्रणाम करेंगे तो गौरवताए देखें, अरे कौन व्यक्ति है जो हमारे भक्त को याद कर रहा है, देखेंगे राधारास बिहारी देखेंगे, सीताराम देखेंगे। मैं देखा हूं कुछ भक्त लोग ओवर स्टेप करते हैं, ये बेसिक ट्रेनिंग है, शुरू में हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था, अब आते हैं इसलिए पढ़ जाते हैं और मंत्र बोलना शुरू करते हैं, नमो महाबदान्य हे कृष्ण करुणा सिंधु और क्या क्या, कोई जरूरत नहीं है सब करने का। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र करोगे तो चेतन महाप्रभु अरे कौन व्यक्ति है भाई जो हमारे भक्त का स्मरण कर रहा है, और डायरेक्ट चेतन महाप्रभु को प्रणाम करो कृष्ण को तो 1000 लोग प्रणाम करने वाले हैं, कोई बात नहीं, कह भी है आपका क्यों सुनेंगे, बहुत बड़े बड़े भक्त लोग हैं उनके साथ, इसका मतलब कि वो देखते नहीं, ऐसा नहीं कि देखते नहीं है, लेकिन यदि प्रभुपाद जी का गुरु का प्रणाम मंत्र करेंगे तो तुरंत देखेंगे। यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, ये हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, आज भी हम लोग करते हैं। तो पहले गुरु का प्रणाम मंत्र करें, प्रभुपाद जी का प्रणाम, उसके बाद में कृष्ण का प्रणाम मंत्र करें, चलेगा। ओवर स्टेप नहीं करना चाहिए। गुरु परंपरा जान भालो मते, अच्छी तरह से समझना चाहिए परंपरा को। एनीवे, तो महाप्रभु खुश थे क्योंकि जगन्नाथ मिश्र खुश थे ब्राह्मण के, इसलिए चैतन्य महाप्रभु खुश होकर के मने आछे बिपरे रो दिवेन दर्शन, अब मैं इस ब्राह्मण को दर्शन दूंगा। ध्यान मात्र करीते लागिल विप्रवर, सम्मुखे आइल प्रभु श्री गौर सुंदर। जब ध्यान कर रहा था वो सन्यासी विप्र, जब ध्यान कर रहे थे तो गौर सुंदर साक्षात उनके सामने आ गए। छोटे बालक थे, शरीर में धूल धूसरित लगे थे, लेकिन बहुत सुंदर, अजान उलंबित भुजाएं बड़ी थी, विशालकाय आंख थी, चरण सुंदर थे। और जब ब्राह्मण घंटी डुला करके भोग लगा रहे थे, उस समय ही महाप्रभु आकर के अपने मुट्ठी से एक मुट्ठी लेकर के और खा लिए। तो ब्राह्मण देखा कि ये बालक आया तो ठीक था, लेकिन उठाकर खा लिए तो ब्राह्मण का हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र डाके, अन्न क्षति करिले क चंचल बालके। हाय हाय, कितना चंचल बालक है, अरे मैं विष्णु के लिए ये अन्न बनाया था, भगवान विष्णु को भोग लगा रहा था, और यह आकर के सब जूठा कर दिया, सब व्यर्थ कर दिया। जब हाय हाय करने लगे तो जगन्नाथ मिश्र बगल में से सुन लिए, सुबह सुबह का समय 10-11 बज रहा होगा। तो आए जगन्नाथ मिश्र, जब देखे अपने बेटे का इस प्रकार का व्यवहार तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि किसी प्रकार से ब्राह्मण तैयार हुए थे रंधन करने के लिए, भोग बनाने के लिए, और बेचारे बनाए, भगवान को भोग लगाए थे, लेकिन ये बदमाश निमाई खराब कर दिया इसको। तो जगन्नाथ मिश्र क्रोधित होकर के और गौर हरि को पकड़ लिए और डांटने फटकारने मारने लगे जैसे। तब यह भाव देख करके विप्र बोला, विप्र बोले मिश्र तुम्हें बड़े बड़ा देखी आर्य, कोन ज्ञान बालके र मारिया के कार्य। हे विप्र, हे मिश्र देव, हे जगन्नाथ मिश्र, आप तो ज्ञान प्रांगत हैं, आप तो ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। अरे यह तो बालक है, आप बड़े हैं, ज्ञानी हैं, तो बालक है, ये बालक ऐसा कर दिया, बड़ा बात क्या है। बाला मंद ज्ञान जार था कि नहीं तारे, आमारा सपत यदि मार उपारे उहारे। कहते इस बालक को मालूम नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, यदि मालूम थोड़े करता। अरे बालक है, गलती कर दिया, आप कृपा करके, मेरा शपथ है, आप कृपा करके इस बालक को मत मारिए। तो महाप्रभु छोड़ दिए गए, जगन्नाथ मिश्र छोड़ दिए। अब मिश्र पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, तब विप्र कहते हैं, विप्र बोले मिश्र दुख ना भावी व मने, जे देने जे हईबे तहार ईश्वर से जाने। कहते हैं मिश्र देव, आप इसके लिए दुख ना करेंगे। अरे जिस दिन जो होने वाला होता है वो होकर रहता है, और भगवान सब कुछ जानते हैं। फलमूल आदि गृह ये था के तुमार, आनी दे आज से ही करी व आहार। आपके घर में जो कुछ भी है फल मूल इत्यादि, आप वही ला दीजिए, ऐसे भी हमारा आदत पड़ा हुआ है, मैं फलाहारी बाबा हूं, वही खाकर रह जाऊंगा। हमारे भगवान की इच्छा है कि भगवान हमारा व्रत न तोड़ाने पाए, इसलिए कहे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे घर में सब कुछ है, आप यदि क्षमा करें तो एक बार और रंधन के लिए तैयार हो जाइए, करिए। तो वो कहे कि नहीं नहीं, इस पर बात हो रहा था, सब लोग वहां पर आ गए और सब लोग नहीं नहीं एक बार और कीजिए, एक बार और कीजिए। तो इस प्रकार से पुनः ब्राह्मण तैयार हो गए करने के लिए, और जो स्त्रियां थी वो गौरचंद्र को पकड़ ली और पकड़ करके और डांटने लगी, कहती थी
सबे नारी गण बोले केने रे निमाय इम त करिया कि विप्रे अन्न खाए। अरे निमाय तू ऐसा क्यों करता है, इस ब्राह्मण क्यों परेशान करता है, बेचारा भोग लगाता तो जाकर जूठा करता है, क्यों ऐसा करता है। तो महाप्रभु कहते हैं हासिया बोले ना प्रभु श्रीचंद्र बदने अमार की दोष विप्र डाकिल आपने। अरे हमारा इसमें क्या दोष है, वो हमको बुलाता है मैं चला जाता हूं, वो बुलाया इसलिए मैं गया, हमारा इसमें दोष क्या है। इस प्रकार से निमाय को फुसला फुसला करके स्त्रियां कुछ लेकर गई दूर, और पुनः वह ब्राह्मण भोग लगाया और भोग बनाया, और भोग बनाने के बाद और पुनः अर्पित करने लगा तो पुनः महाप्रभु आए। जय श्री श्री गौनताय की जय, राधारास बिहारी की जय। पुनः आए और उसको देखते देखते एक मुट्ठी उठाए मुंह में डाले भाग गए वहां से, इस बार खड़े नहीं थे भाग गए वहां से, और पुनः वो हाय हाय करने लगा और पुनः जगन्नाथ मिश्र दौड़ते हुए आए। हे ना महाचोर शिशु कार घर आछे एत बोली क्रोधे मिश्र धाय प्रभु पाछे। चित्रमारु भाग गए वहां से और अपने घर में नहीं कि दूसरे घर में जाकर छिप गए। तो एक चोर बदमाश निमाय है कहां, किसके घर में छिपा हुआ है, आज मैं उसको दंड दूंगा। और जगन्नाथ मिश्र बड़े गुस्से थे, शरीर कांप रहा था। सभी बोले ना मिश्र तुम्ही तो उदार उहारे मारीबा को न साधु था तुमार भाला मंद ज्ञान नाही उहार शरीरे परम अवध जे ए मन शिशु मारे। सब लोग कहे कि छोड़ दीजिए गलती कर दिया, पहले तो ब्राह्मण ने कहा, अब सब लोग कह रहे छोड़ दीजिए छोटा बालक है नहीं जानता है गलती कर दिया। और पिना इस बार भी अब कोई मना, अब मिश्र के कहने पर तो एक बार तो ब्राह्मण भोजन मना लिया था, अभी दूसरा बार हो गया था। अब मिश्र जगन्नाथ मिश्र बड़े व्यथित हो गए, सिर नीचे झुका दिए, सिर ऊपर उठा रहे थे। यदि सेवक शिष्य और पुत्र कोई गलती करता है तो गलती उसकी नहीं होती है, गलती किसकी होती है, बाप की। दोष लगता है बाप पर, गुरु पर और मालिक पर। कई एक उदाहरण इसके हैं। जब चतुष्कुमार जय विजय को श्राप दे दिए तो भगवान बाहर आए नारायण और चतुष्कुमारों से क्षमा मांगे कि गलती इन लोगों का नहीं है, गलती तो हमारा है कि हमने ट्रेनिंग नहीं दिया है। कोई बेटा गलती करता है तो कोई नहीं पूछता किसका नाम क्या है, बोलते हैं किसका बेटा है, इसका बाप कौन है, हैं? तो फिर बाप कौन है, किसका बेटा है, बाप का नाम पूछते हैं, उसका नाम नहीं पूछते हैं। कोई शिष्य गलती करता है किसका चेलाया है ये पूछते हैं ना, कोई शिक्षा नहीं दिया था गुरु। तो शिष्य पुत्र और सेवक के करने से गुरु पिता और मालिक को सिर झुकाना पड़ता है। उसी प्रकार आथे व्याथे आसित थे तैत्रिक और ब्राह्मण मिश्र धरिया हाथे बोले ल वचन। अपना सिर नीचे झुका लिए थे, अब किसी प्रकार से लज्जित थे, अब ब्राह्मण आकर के उनको पेसिफाई करें। बालक के रना ही दोष सुन मिश्र राय जे दिने जे हो बेतार हो बारे चाय। कहते हैं हे मिश्र देव इसमें बालक का गया दोष है। अरे जिस दिन जो होने वाला होता है वो होकर ही रहता है, कोई उसको टाल नहीं सकता है, वो होकर होता है। हई बारे चाय आज ही कृष्ण अन्न नाही लिखे तो हमारे सबे यही मर्म कथा कहिलू तुम्हारे। ये आप समझ लीजिए कि आज हमारे भाग में अन्न खाना नहीं लिखा हुआ है। अरे कृष्ण यदि अन्न खाना लिखे होते हमारे भाग में तो जरूर मैं अन्न खाता। ये सब कुछ प्री डिस्टिंड है कि आज हम क्या खाएंगे, कहां सोएंगे, क्या होगा, आज हम जिएंगे कि मरेंगे, ये सब प्री डिस्टिंड, हमको मालूम नहीं है।
जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वैष्णव होते हैं, इस बात को जानते हैं। कहते आज ही कृष्ण अन्न नाही लिखे ना आमार, कृष्ण की इच्छा नहीं है, क्या कर सकते हैं, गुस्सा नहीं करता है, तुम ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों होना चाहिए। अरे होना था भाई, काहे चिंता करते हो, ये होना था, कृष्ण परमिट किए तभी कुछ हुआ है। एक मुझे एक नलायक शिष्य का कथा याद आ रहा है मुझे। एक नलायक शिष्य था, वह हमेशा प्रयास करता था कि अपने गुरु को झूठा साबित करें, हमेशा। तो उसने एक दिन गुरुजी से आकर पूछा कि गुरुजी आज मैं क्या खाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तू आज खीर खाएगा, खीर समझते हो ना, क्लास के बाद मिल रहा है स्वीट राइस, तू आज खीर खाओगे। तो कहा बस बस अब सिद्ध करना है, आज मैं कुछ खाऊंगा या नहीं, आकर शाम को बोलूंगा गुरुजी आप झूठ बोल रहे हो, मैंने खीर नहीं खाया। तो क्या किया कि आश्रम था पहाड़ जंगल में, तो जाकर के एक बहुत सुंदर वृक्ष था, घनघोर वृक्ष था, उस वृक्ष पर सुबह से बैठ गया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बस वहां बैठ गया वृक्ष पर। वहीं बगल में गायों का मेला लगा हुआ था, पशुओं का मेला, गाय बैल का मेला लगा था। तो गाय बैल के मेले में लोग आते हैं बेचने के लिए, गाय बैल भैंस सब बेचने आते हैं। तो कुछ लोग बेचने आए थे, तो कुछ गाय तो बेच लिए थे और कुछ गाय उनके साथ थी। तो गाय को लेकर के जा रहे थे, अब शाम हो गया और जंगल में आए, देखे बड़ा सुंदर घना घना एक वृक्ष है, तो उन्होंने सोचा कि आज रात्रि हम यही विश्राम करते हैं और कल सुबह हम लोग चलेंगे। तो उनके पास गाय थी, दूध था, चावल था, तो उन लोगों ने शॉर्टकट किया कि आज हम लोग खीर बना करके खा लेंगे। कुछ गाय बिकी हुई थी और कुछ बाकी थी, कहा आज खुश था लोग थे तो गाय का खीर बनाएंगे, दूध का खीर बनाएंगे। तो लोग गाय दूहे और खीर बना रहे थे, उसी में से उसी समय कोई व्यक्ति भागते भागते आया और कहा वो चोर लोग आ रहे हैं, चोर लोग आ रहे हैं। तो लोग बेचारे कुछ गाय बेचे थे, कुछ पैसा था, तो चोर आएंगे मारपीट करके पैसा ले लेंगे। तो ये लोग वो खीर का बर्तन वहीं छोड़ करके, मिट्टी का बर्तन था, सोने चांदी का बर्तन नहीं था, मिट्टी का बर्तन था, उसको खीर को आग पर ही छोड़ करके और गाय को लेकर के भाग गए। जब भाग गए तो चोर लोग आए तो देखे, अरे यहां तो खीर बन रहा है, तो कहा इसका मतलब कोई आदमी यहां पर था, इधर ही कहीं छिपा होगा। सब लोग देख रहे थे, तो उन चोरों में एक काना था, काना समझते हो ना, एक आंख वाला। वो काने लोग बड़े चलाक होते हैं, सब लोग इधर उधर देख रहा था, अरे ऊपर देख लिया है। तो ऊपर देखा तो महात्मा बैठे हुए थे ऊपर हैं। तो ये काना बोल पड़ा, देखो भाई ये बदमाश ऊपर बैठा है, इसको मालूम है कि हम लोग आ रहे हैं और एक खीर बना रहा था, इसमें विष डाला है, हैं? इसमें विष डाला है यह बतलाने कि हम लोग खाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए ऐसा किया है। तो उसको नीचे उतारे, है जल्दी आओ नीचे, वो नहीं आ रहा था। कह तुम आ रहे हो कि हम ऊपर आए? तो सोचा कि यदि मैं नहीं आया तो ऊपर से फेंक देंगे लोग, मर जाऊंगा। तो बेचारा नीचे आया कि तब रे क्या कर रहा था तू, हम लोग मारना चाहता था, इस खीर में तो विष डाला है। तो कहा नहीं 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 हमने ऐसा नहीं किया है। वो पूरा कहानी बता दिया। तो एक काना ने कहा कि झूठ बोल रहा है, ये सत्य बात नहीं है, झूठ बोल रहा है, इसने ही खीर बनाया है। कहा कि नहीं नहीं मैं खीर नहीं बनाया हूं, सत्य बोलता हूं, कसम खाता हूं भगवान का। तो ठीक है जब तुम विष नहीं डाले तो तुम खाओ पहले इसको। तो कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता हूं। तो काना ने कहा देखा मैं सही बोला ना, ये विष डाला है इसमें, ये खाना नहीं चाहता है। तो उसको दो हजार झापड़ मारे, जब झापड़ दो हजार मारे तो भी नहीं खा रहा। तो गुरु को सिद्ध करना था ना कि गुरु झूठ बोल रहे हैं, मैं खीर नहीं खाया। वो मारे दो हजार झापड़ मारे फिर भी नहीं खा रहा था, तो और थोड़ा मारे, हाथ पैर टूट गया। अब लगा कि मार डालेंगे उसको, इनको थोड़े हृदय में थोड़ा भी प्रेम था, अब मार डालेंगे इसको। तो सोचा कि मरता क्या नहीं करता, गुरु जी क्षमा करना, आज मैं आपके वाणी को झूठा साबित नहीं कर पाऊंगा। और उसको खीर खाना पड़ा। जब खीर खा लिए सुबह में अब जय गए तो हाथ पैर टूटा था, बंधे हुए थे, गुरु जी के बाद हाय हाय करते हुए गए। गुरु जी शिष्य सब क्या हो गया, तूने क्या किया? कहा गुरुदेव अब मत पूछिए क्या किया, आपने कल कह दिया खीर खाऊंगा और मैं आपको झूठा साबित करने के लिए किया। तो जो गुरु का आज्ञा पालन नहीं करता उसका यही हाल होता है, हाथ पैर टूट जाता है, है? तो गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कर आख्य, कृष्ण निर्धारित कर लिए हैं कि किसको क्या होने वाला है, तो कृष्ण निर्धारित किए हैं। इसीलिए विप्र ने कहा आज ही कृष्ण अन नहीं लिखी ने आमार सभी यही मरम कहा था कहलू तुम्हार, कृष्ण की इच्छा है इसलिए मैं नहीं खा पाऊंगा। अब इस प्रकार से अब रिक्वेस्ट भी ब्राह्मण नहीं कर सकते, जगन्नाथ मिश्र नहीं कर सकते, एक बार कर चुके थे, अब करें क्या। उसी समय पिताजी का लाज बचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु निमाई के गौर सुंदर के बड़े भाई विश्वरूप जी वहां पर आए। विश्वरूप के अंग कांति को देख करके बड़ा सुंदर वृंदावनदास ठाकुर विश्वरूप का वर्णन किए हैं, वह देख करके ब्राह्मण मुग्ध हो गया विश्वरूप के स्वरूप को देख करके, और इस प्रकार से पूछने लगा कि यह बालक कौन है, यह किसका बालक है। तो बताए कि मिश्र का बालक है, बड़ा पुत्र है, इसका नाम है विश्वरूप, और महापुरुष के सब चिन्ह विश्वरूप में भी थे। विश्वरूप का दर्शन करते हुए अपने जीवन को धन्य मानने लगा ब्राह्मण। विश्वरूप पुनः अपने पिता के बिहाफ में रिक्वेस्ट किए कि आप यदि दुख ना माने तो एक बार और प्रयास करें रंधन करने का, तीसरा बार था। विश्वरूप बोले नहीं कुछ दोष तुम्ही पाक करिले से संभार संतोष, एक बोली विश्वरूप धरिला चरण साधिले लागिल सबे करित रंधन, विश्वरूप देखिया मोहित विप्रवर करी बरंधन विप्र बलिला उतर। इस प्रकार से विश्वरूप हा अनुनय विनय कर कर करके कह इसमें बालक ने गलती कर दिया, हम लोगों का दोष क्या है, हम तो चाहते हैं आपका सत्कार करना, हमें पूरा विश्वास है कि बालक ने गलती कर दिया है। कहा जाता है रियलाइजेशन रिपेंटेशन रेक्टिफिकेशन एंड रीयूनिफिकेशन, पहले रियलाइज करना मुझसे गलती हो गई है तब रेक्टिफाई करना चाहिए, रिपेंट करना चाहिए, हाय हाय ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, तब रेक्टिफाई करने चाहिए कि ऐसा भविष्य में ना होने पावे। और ये चारों कार्य यहां पर हुआ है, सब लोग रिपेंट कर रहे हैं, समझे कि निमाई गलती कर दिया, सब लोग रिपेंट कर रहे हैं, और रिपेंट के भावना में ही विश्वरूप आकर के उनका चरण पकड़ लिए और कहे कि एक बार और हम पर कृपा करके रंधन कीजिए, करीब रंधन विप्र बलिला उत्तर उत्तर देते हुए ब्राह्मण कहते हैं कि ठीक है इस बार मैं करूंगा। और रेक्टिफाई करने के लिए क्या किए, वे लोग निमाई को ले जाकर के दूसरे रूम में ताला बंद कर दिए, ये चंचल हो गया ना, ताला बंद कर दिए हाथ पैर बांध करके। अब जगन्नाथ मिश्र खोज रहे हैं निमाई को, निमाई है कहां, निमाई है कहां। तो इस श्री आप चिंता मत कीजिए, इस बार तो ऐसा हम इनका इसके लिए ऐसा व्यवस्था किए हैं कि अब कभी आए गए नहीं। क्या किए हो, कैसे हाथ पैर बांध करके घर के अंदर लॉक कर दिए हैं, हालांकि हाथ पैर नहीं बांधी थी स्त्रियां लेकिन घर के अंदर लॉक कर दी थी। तो कहा कि ठीक है अच्छा है अब नहीं आएगा, दरवाजा बाहर से पूरा बंद कर देना, लॉक कर देना, सिकरी चढ़ा देना ऊपर। अब जगन्नाथ मिश्र कहे कि नहीं ये चमत्कारी बालक है, कुछ लोग पहरा भी दो, शायद कोई अगर खोल देगा तब, कोई उसके प्रति दयालु अगर खोल देगा तो पहरा दो, तो कुछ लोग वहां पहरा भी दे रहे थे। और जब ब्राह्मण देवता तीसरे बार बना लिए भोजन, अन्न उपस्कार करी सुकृत ब्राह्मण ध्याने बसी करिते लागिल निवेदन, जानी लेला अंतर्जामी श्री सचिव नंदन चिते आछे विप्रे न देवेन दर्शन। ये श्लोक दो बार, ये प्यार दो बार आया हुआ है, पहले बार भी और दूसरे बार भी। अब पहले तो भगवान विचार के दर्शन दूंगा, अब चिते आछे मतलब दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं दर्शन दूंगा, इस बार एक बार दो बार तीन बार हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ए वही केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर्नता, इस प्रकार से। तो चैतन्य महाप्रभु विचार किए कि इस बार जरूर दर्शन दूंगा, और ऐसा सोच कर करके गौरहरी अब जोग निद्रा को बुलाए, निद्रा देवी को बुलाए, अपने जग गए, ताला बंद है, सिकड़ी बंद है, अंदर हैं और पहरा दे रहे हैं बाहर। जो जग रहे थे वो सो गए। अच्छा, महाप्रभु अंदर जाकर सो भी गए थे, तो स्त्रियां का अब सो गया है, बाहर से बंद भी कर दिए हैं, हाथ पर भी बांध दिए हैं, अब नहीं आएगा। तो महाप्रभु सोने का ढंग कर रहे थे, तो सो गए थे, जो सोया हुआ था वो जग गया, और जगे हुए थे सब सो गए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कृष्ण का जब आविर्भाव हुआ तो मथुरा के जितने भी पहरेदार लोग थे कंस के सब सो गए थे, वैसे ही सब पहरेदार लोग प्रगाढ़ निद्रा में सो गए थे। निद्रा देवी संहारय ईश्वर इच्छाय मोहिले न सभई अचेष्ट निद्राय। अचेष्ट निद्रा में, प्रगाढ़ निद्रा में सो गए। जे स्थाने करें विप्र अन्न निवेदन आईले न से स्थाने श्री सचिनंदन। जिस स्थान पर ब्राह्मण देवता भोग लगा रहे थे, अंदर अल्टर के अंदर पहुंच गए वहां पर सचिनंदन। बालक देखिया विप्र करे हाय हाय सभे निद्रा जाए के हो सुने ते ना पाए। मान लीजिए एक 10-12 रात को बज गया था, 10-11 बज गया था, सुबह से भोजन बन रहा था, 3 बार हो गया ना, तीसरा बार था, सब लोग थक गए थे, सो गए थे, और विप्रवर हाय हाय कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, सब प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं और निद्रा देवी सबको प्रेम से सुला रही है। बालक सबे निद्रा जाए के हो सुने ना ही पाए। प्रभु बोले, अये विप्र तुम्ही तो उदार, तुम्ही आमा डाकी आन कि दोसा आमार। हे उदार चित्त विप्र, आप बार बार हमें बुलाते हो और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग 80s में ड्रामा किया करते थे और ये ब्राह्मण का रोल मैं करता था, तो मुझे आज भी वो प्यार याद है कुछ कुछ, जो ब्राह्मण का भोग लगाने वाला। तो यहां उस समय ये ड्रामा हम लोग किए थे, ये तैत्रिक ब्राह्मण वाला ड्रामा किए थे। आप लोग भी प्रयास करना, जो यंग लड़के हैं कर सकते हैं ड्रामा, ड्रामा करना चाहिए। स्क्रिप्ट लिखना बड़ा इजी है, कोई बड़ा बात नहीं है, करना चाहिए। ये बाहर के लोग करते हैं उसे अच्छा होगा कि वैष्णव लोग करें तो उसका ज्यादा फायदा होगा। भक्ति कला चित्र वाला कहाँ है? यहाँ पर नहीं है, चला गया हो है, अपना बैठे हुए हैं। चलिए, मैं रसा बंधु को ढूंढ रहा था, तो वैष्णव लोग करे तो अच्छा है। एनीवे, उन दिनों हम लोग ये ड्रामा कर रहे थे, हमारे डायरेक्टर साहब थे क्या बनर्जी साहब, ब्रह्म मुहूर्त दास, बेचारे नहीं रहे अब। तो कहते आप, तुम बार बार बुलाते हो मुझे और मैं ना आऊं। कहते हैं बुलाना ही तो छोड़ो, तो मानो मैं कैसे बुलाता हूं आपको, कम मैं बुलाया? कहे भूल गया तू, मोर मंत्र जपी मोरे करह आह्वान रहिते न पारी आमी आसी तुम आस्थान। अरे मेरे नाम का तुम मंत्र जप कर रहे हो, तो मुझे नहीं तो और किसको बुला रहे हो? जब तुम मेरे नाम का मंत्र जप कर रहे हो तो मैं रह नहीं पाता हूं, जो कोई बुलाता मैं आ जाता हूं। हमारे देखी ते निरवधि भाव तुमी अतएव तुम्हारे दिलाऊ देखा आमी। तुम हमेशा मुझे देखना चाहते हो इसीलिए मुझे पुकार रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो तुम क्या कर रहे हो, और तुम आए हो पुकार रहे हो इसलिए मैं आया हूं और मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। सही छड़े देखे भी परम अद्भुत शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप। गौरहरि का षडभुज रूप तो देखे हैं, ये अष्टभुज रूप भगवान दिखाए, 8 भुजा वाले रूप गौरहरि वहां पर हो गए। 4 हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म था, 2 हाथ में, 1 हाथ में माखन लिए थे और दूसरे हाथ से माखन खा रहे थे, और 2 हाथ में भगवान बांसुरी बजा रहे थे। आप समझ सकते हैं 8 भुजा जो था, तो 4 भुजा में शंख चक्र गदा पद्म, 2 भुजा में, 1 में हाथ पर माखन लिए थे, दूसरे से खा रहे थे और दो और जो भुजाएं थे उसमें से बांसुरी बजा रहे थे। तो और भगवान के यहां पर सौंदर्य का वर्णन किया गया है, श्री वस्व कौस्तुभ बक्षे शुभ मणिहार सर्व अंगे देखे रत्नमय अलंकार। इस प्रकार से भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और देख करके ब्राह्मण मूर्छित हो गया और बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो भगवान ने कहा तुम भूल गया, पूर्व जन्म में तुम यही ब्राह्मण था और नंद बाबा के यहां पर तुम आया था ब्राह्मण के रूप में, और पता है तुम्हें भोजन खिलाया था, इस रूप का दर्शन किया था। तो ये दो रूप का दर्शन, अष्टभुज रूप का दर्शन महाप्रभु कराए ब्राह्मण को दो बार, एक कृष्ण लीला में और एक चैतन्य लीला में। अब कराने के बाद कहते हैं कहिलाऊ तुम्हारे सकल गोप कथा, ये सब गोप कथा में तुम्हें गोपनीय कथा कह दिया हूं कि तुम कौन था मैं कौन था इत्यादि। कारा स्थान यह नाई करी व सर्वथा, लेकिन इसका व्याख्या और तुम कहीं मत करना, अब तुम किसी से मत कहना, ये तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा संहार हो जाएगा। अरे उस स्वरूप का तुम दर्शन किया जिस स्वरूप का दर्शन आज तक कोई नहीं किया था। हे ब्राह्मण, जब तक से मैं प्रचार करूंगा ब्रह्मादि जी प्रेम भक्ति योगा वांछा करे तहां भी लाई मु सर्व प्रति घरे घरे। अरे ब्रह्मा जी भी जिस प्रेम के लिए तरसते रहते हैं नहीं प्राप्त होता है, उस प्रेम को मैं घर घर में जाकर के लोगों को दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब तक से मैं पूरा प्रचार न कर पाऊं तू मुंह मत खोलना। और ब्राह्मण वहीं नवदीप में रहने लगा। इस प्रकार से ब्राह्मण वहीं निवास किया और चेतन महाप्रभु का जो तैतृक ब्राह्मण के साथ तीन बार जो अतिथि भी प्ररे अन्न खाइला तीन बार पाछे गुप्त से विप्र करिल निस्तार, गुप्त भाव का दर्शन दिलाए और स्तार किए। तो एक कथा रही इसका, एक कथा और मैं कहूंगा। तीन कथाएं हैं, एक है दूसरा है चोर लैया गेल प्रभुर बाहिर पलाइया बाहिर पाइया तार स्कंधे चढ़ी आइल तार भूलाइया। एक समय की बात है, गौरहरि थोड़ा बड़ा हो गए थे, तो आप लोगों को मालूम होगा कि वृंदावन में जब भगवान लीला विहार कर रहे थे तो एक लीला है ना आप लोगों को, जिसमें वो प्रलंबासुर को शायद मारे थे ना, जिसमें जो हार ज्यादा था उसको चढ़ाना पड़ता था, कौन था प्रलंबासुर आया था, तो जो भी हार जाएगा वो चढ़ाएगा। तो कभी कृष्ण सखाओं को चढ़ाते थे और कभी सखा कृष्ण को चढ़ाते थे। तो इस प्रकार से ये लीला होता था। तो वही लीला गौरचंद्र नवदीप में कर रहे थे, ग्वाल बालों के साथ में ऐसा कर रहे थे। तो और महाप्रभु ग्वाल बालों के साथ में दूर तक चले गए थे। तो और सब महाप्रभु बड़े परेशान करते थे, नटिल बॉय थे महाप्रभु, नटखट थे, सबको परेशान करते थे, छल कपट भी करते थे और बार बार अपने अपने मित्रों को हरा देते थे उनके कंधा पर चढ़ने के लिए। महाप्रभु का मन नहीं भरता था कंधा पर चढ़ने से, और सब ग्वाल और जितने उनके सखा थे सब भाग गए कि बदमाशी करता है। अब जो चीटिंग करता था तो कौन क्या खिलवाड़ करेगा, वो चीटिंग हमेशा करता है, और महाप्रभु की इच्छा थी कि कंधा पर चढ़े। तो हट्ठे कट्ठे दो चोर आ गए, सब मित्र लोग भाग गए थे, अब दो चोर देख कोई नहीं था, गौर सुंदर वहां पर थे और सती माता के सुपुत्र थे और उनके शरीर पर कीमती आभूषण भी थे। तो चोरों ने देखा कि अरे कोई नहीं है, बड़ा सुंदर बालक है, आभूषण लगाया हुआ है। तब उन चोरों ने सोचा कैसा करते हैं, इसको चुरा कर अपने घर ले चलते हैं और बाद में इसका आभूषण हम लोग इसे उतार करके छोड़ देंगे। आजकल के तो मर्डर कर देते हैं, किडनैपिंग करते हैं बाद मर्डर करते हैं। तो दो किडनैपर लोग आए और कहे कि बालक आओ आओ, तुमको हम कंधे पर चढ़ाकर ले चल करके घर ले चलते हैं। महाप्रभु, हाँ हमारे मित्र चले गए, मैं घर का रास्ता भूल गया हूं, चलो तुम लोग मुझे घर ले चलो। है तो लोग चोर समझ गए, ये तो हमारे घर चलने के लिए तैयार है, और महाप्रभु तो अपने घर जाना चाहते थे। कहे चढ़ जाओ, चढ़ा लो। तो अपने कंधे पर चढ़ा लिए, हट्टे कट्टे थे, चढ़ा लिए। महाप्रभु चढ़ गए कंधे पर और बड़े खुश होकर के दोनों जा रहे थे, बात करते हुए कि ये मिलेगा ये मिलेगा। अब इधर सब बालक लोग खेल करके आए, लेकिन गौरहरि घर नहीं आए। तो सबसे लोग पूछने लगे कि कहाँ है निमाई, कहाँ है निमाई, कहाँ है। सब बालकों ने कंप्लेन करना शुरू किया, निमाई परेशान करता है, चीटिंग करता है, जब हार जाता है तो झगड़ा करता है, हम लोगों को मारने लगता है, हमेशा कंधा पर चढ़ना चाहता है। हम उसको छोड़ करके भाग आए। सब लोग गए ढूंढने के, सब जगह ढूंढ रहे हैं और गौरहरि कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सब आकर के उदास होकर के कहने लगे कि गौरहरि दिखाई नहीं पड़ रहे। अब जगन्नाथ मिश्र सची माता व्यथित होकर के लगे रोने बहुत देर तक। कुछ लोग आ गए वहां पर उनको संवाहन बतलाने के लिए, चिंता मत कीजिए, बालक है, इधर ही कहीं होगा, आ जाएगा, नहीं गंगा जी तरफ चला गया होगा। तो इस प्रकार से लोग बात कर रहे थे आपस में। उसी समय ये दोनों चोर की मति महाप्रभु भ्रमित कर दिए। वो बोले थे घर ले चलेंगे ना, तो हाँ घर ले चलो। तो घूमते 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 बहुत दूर घूम करके चैतन्य महाप्रभु घर पर लेकर के आ गए। जब घर पर लेकर के आए वो समझे कि हम अपने घर ले जा रहे हैं, लेकिन महाप्रभु के घर लेकर के आए। जब घर पर लेकर के आए तब उनकी स्मृति हुई, तो करे ये कहां आ गए, ये किसका घर है। अब चोर तो ऐसे ही भय बना रहता है, तूने भय हो गया, कहीं हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। तो तुरंत निमाई को उतारे और चले भाग, दुम दबा करके भाग गए वहां पर। अब निमाई भागते भागते आए और जगन्नाथ मिश्र के गले से लग गए। सब लोग बथित थे, अरे निमाई तू कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, कहां था। कहा दो व्यक्ति हमको कंधे पर उठा करके लेकर के आए और यहां के चल गए। तो मिश्र देव बड़े खुश हुए, कहे दोनों व्यक्ति हैं कहां, खोजो खोजो। सब खोज रहे हैं, कहीं पता नहीं, भाग गए चोर लोग। तो महाप्रभु कंधे पर चढ़ना चाहते थे, ये दूसरी कथा। तीसरी संक्षिप्त में बताया, तीसरी कथा है कि चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक दिन जाया करते थे गंगा जी के किनारे नहाने के लिए। वो मजा बंबई में नहीं है, वो नदी या तालाब के किनारे कोई नहाने जाए और नदी के किनारे यदि कोई वृक्ष हो तब तो और कहना क्या है, है? वृक्ष पर से कूद कूद कर नदी में डुबकी लगाते थे हम लोग जब छोटे बालक थे। कृष्ण भी चाहते थे, एक भक्त ने एक पद गाया है, एक कदम का पेड़ था तो कृष्ण उस कदम पेड़ को देखे, बड़ा सुंदर सुंदर फल लगा हुआ था, उसके डाल सुडौल थे, मजबूत थे। तो मैया से पूछे कि मैया यह किस चीज का वृक्ष है। तो मैया ने कहा कि ये तो कदम का वृक्ष है। तो मानो कृष्ण कदम के विषय में जानते थे, सुने थे। तो उस भक्त ने एक भजन गाया है, यह कदम का पेड़ अगर मां होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। अवध बिहारी एक पोएट हुआ करते थे, वो गाए थे, हम लोग पढ़े थे इसको। यह कदम का पेड़ अगर मां होता जमुना तीरे, हे मैया यह कदम का पेड़ जमुना के किनारे होता तो तुम्हारा कन्हैया उस पर बैठ करके बांसुरी बजाता और कूद करके हम क्या क्या करते, सब बात कृष्ण अपने मुंह से मैया से वर्णन किए हैं। तो वृक्ष नदी के तालाब के किनारे हो तो उसका मजा ही कुछ और होता है, तालाब में नहाने का, नदी में नहाने का। तो गौरहरि जाया करते थे दोस्तों के साथ में और खूब पानी का किरणा करते थे। कोई तैरना नहीं जानता था, उसको उठाकर जबरदस्ती पटकते थे पानी में, हैं, और बाद में निकाल भी देते थे। सबको तारने वाले आए थे महाप्रभु, को डुबाने वाले नहीं थे, सबका उद्धार करने के लिए आए थे। और महाप्रभु का स्पर्श होते ही वो बालक लोग तैरना सीख जाते थे, ये भी बात था। तो इस प्रकार से किरणा करते थे महाप्रभु। एक दिन महाप्रभु देखे कि कुछ वहां पर लड़कियां आकर के और स्नान कर कर करके कबू शिशु संगे स्नान करीते गंगाते कन्यागण आइला तहां देवता पूजिते। जो श्लोक यहां पर लिखा हुआ है, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु आते थे गंगा किनारे मित्रों के साथ स्नान करने के लिए, और वहीं पर कन्याएं आती थी देवताओं का पूजन करने के लिए, दुर्गा का, शिव जी का, अच्छा पति मिल जाए इत्यादि इत्यादि, गंगा जी से पूजा करती थी, गंगा जी को जल चढ़ाती थी इत्यादि। तब महाप्रभु उन कन्याओं से कह रहे हैं, कन्या रो कहे आमा पूजा अमी दिव बर, अरे तुम लोग किसका पूजा कर रही हो, ये गंगा का, ये दुर्गा देवी का, अरे मेरा पूजा करो, तुम लोग मेरा पूजा करोगे मैं तुम्हें बर दूंगा, ये गंगा दुर्गा तुम्हें क्या बर देंगी, ये सब तो जो मैं देता हूं वही देती हैं, इनके पास है क्या, इनके पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर, अरे ये तो ये भगवान शिव भी हमारे सेवक हैं, ये लोग तो वही देंगे मुझे दूंगा। इसलिए भक्तों को सीखना चाहिए, मैं देखता हूं हमारे भक्त लोग भी शिवरात्रि आती है तो शिव जी के मंदिर में चले जाते हैं, कुछ तो डेली जाते हैं वहां पर। प्रभुपाद जी कंडेम्ड किए हैं इस परपोट में, क्यों मूर्ख लोग हैं, उन्हें कृष्ण पर विश्वास नहीं है। प्रभुपाद जी दो श्लोक बताए हैं, कामस्थ हित ज्ञान प्रबंधि अन्न देवता, कामना बस जाते हैं दूसरे देवताओं का पूजा करने के लिए, जो कृष्ण का पूजा किया सब कुछ उसमें आ गया। आज आज वो लोग पूजा करेंगे शिव का, काली का, दुर्गा का, नवग्रह का, कल साई बाबा का, परसों किसी व्यक्ति विशेष का, ऐसे ही करेंगे। प्रभुपाद जी सुंदर बात किए हैं कि ये लोग, इनके पास बॉडी है, और बॉडी मतलब चेंज होने वाला है, ये भौतिक है, ये भौतिक पूजा है, ये पूजा करना है तो कृष्ण का पूजा करो और किसी का नहीं। जो भगवान देंगे वो और कौन क्या दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता जो भगवान देंगे। एक वैष्णव था और एक फकीर था, एक मुसलमान साधु था और एक हिंदू साधु था। ये दोनों आपस में कहते थे, एक राजा था उसका नाम था अशरफ दौला, तो जो साधु था वह कहा करता था जो देगा मौला क्या देगा अशरफ दौला, मौला मतलब भगवान, जो भगवान हमको देंगे ये अशरफ दौला क्या देगा। और जो फकीर था वो कहा जो देगा अशरफ दौला क्या देगा मौला। सुलोचन जब तो जब से आए हो सो ही रहे हो, तो आश्रम में सो जाओ ना, अभी भी सो ही रहा है, जब से आया है मैं देख रहा हूं सो रहा है, कठिन परिश्रम बेचारा कर रहा है, उसे पूछो क्या सुना है आज, हैं कुछ सुने हो। तो यही बात थी, अब यह बात किसी प्रकार से अशरफ दौला के पास, राजा के पास चली गई, तो राजा दोनों को बुलाया, साधु को भी बुलाया और मौला को भी बुलाया, तो पूछा दोनों से, मौला से पूछा कि तुम क्या बोलते हो, सॉरी फकीर से, तो कहा कि महाराज मैं तो यही बोलता हूं कि जो देगा अशरफ दौला क्या देगा मौला। साधु से पूछा तुम क्या बोलते हो, कहा कि जो देगा मौला क्या देगा अशरफ दौला। तो उन्होंने पूछा तुम्हें विश्वास है, तो कहां विश्वास है, फकीर से पूछा तुम्हें विश्वास है, कहां विश्वास है, कहा ठीक है जाओ आज के एक महीने बाद आना और तुम लोग बताना, नहीं एक में सात दिन के बाद आना और तुम बताना तुम लोग कौन क्या दिया है। क्या ठीक है, गर्मी का दिन था तो अशरफ दौला ने उस फकीर को बुलाया और गर्मी का दिन था उसको एक वाटरमेलन दिया, वाटरमेलन समझते हो ना, तरबूज, और उसमें छेद कर करके एक सोने का गिनी डाल दिया और वो दे दिया उस फकीर को. फकीर समझा कि इस वाटरमेलन से क्या होगा, परिवार का भरण पोषण थोड़े होगा, पेट मेरा भरता परिवार का नहीं होगा. तो उसने क्या किया, वह फल ले जा करके एक फल बेचने वाले को बेच दिया और उसे कुछ पैसा लेकर के वो चला गया. अब जो वैष्णव था बेचारा, कुछ मधुकरी किया था, कुछ अन्न प्राप्त था, सोचा कि अब ये अन्न प्राप्त है, इसका रंधन कहां करने जाऊंगा, ऐसा क्यों ना कि आज फल ही मैं खा लेता हूं. तो वह जो चावल या गेहूं जो भीख मांग कर लाया था वह लेकर के गया दुकानदार उसके पास जो फल बेच रहा था. तो वही फल से अपना देख रहा था, तो देखा तो इस फल में थोड़ा छेद था, तो कहा ये खराब है, साधु है, साधु लोगों लोग समझते हैं मूर्ख है ही ना, इसको चलो खराब फल दे देते हैं. तो खराब फल उस चावल के बदले में दे दिया. अब साधु महात्मा लेकर के आए, फल को काटे तो देखे उसमें सोने का एक सर्फी है. तो जो फकीर डेली जाया करता था अशरफ दौला के पास, और डेली एक तरबूजा उसको मिलता था और डेली बेचता था, यही काम था. और साधु भी यही करता था. तो 7 दिन के अंत में दोनों गए राजा के पास. तो अशरफ दौला पूछा फकीर से, तब तुम्हें क्या मिला है? कहा कि महाराज, अरे आप धन्य हैं, आप सबका भरण पोषण करते हैं, आपने हमको इतना देखभाल किया, इतना किया, इतना किया कि हमारे परिवार का भरण पोषण 7 दिन तक फर्स्ट क्लास चलता रहा, कोई तकलीफ नहीं हुआ. साधु से पूछा, तुम्हारा मोहरा तुमको क्या दिया? तो तुरंत निकाला वो 7 गोने का सोने का क्वाइन, 7 गोने सोने का गिनी, कहा देखिए हमारा मौला ने ये दिया. अब राजा स्थिर पर हाथ दिया, अरे ये कैसे उल्ट गया, तो उल्टा हो गया, ये तो मैं इसको दिया था, इसको कैसे मिल गया, ये कैसे मिल गया? तो पूछा राजा, आज तुम बचाओ, तुम्हें ये कहां से मिला, और तुम बताओ जिसको मैं जो तरबूज तुम्हें देता वो क्या तुम किया? कहा कि महाराज आप तरबूज देते थे, वो तरबूज में छेद था, वो खराब था, इसलिए मैं उसको दुकानदार के पास बेचता था, जो पैसा मिलता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था. साधु से पूछा, तुम्हें कहां से मिला? वो कहा कि मैं तरबूजा वाले के पास गया था, वो खराब समझ का तरबूजा मुझे बेच दिया, मैं ले लिया, अरे तरबूजा तोड़ा तो उसमें से सोने गिनी मिला. तो राजा कहा कि साधु तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जो देगा मौला क्या देगा अशरफ दौला, अरे ये तो हम भी जो दे रहे हैं वो अल्लाह का ही देन है, वो मौला का ही देन, मौला देता है वही मैं देता हूं, मैं कहां से देता हूं. उसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं, शिव जी, काली जी, दुर्गा जी, ये लोग वही देते हैं जो कृष्ण देते हैं, यदि कृष्ण न दें तो कुछ ये लोग नहीं दे सकते हैं. इसलिए मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि देवी देवता का पूजा करें, बल्कि कृष्ण का पूजा करें और किसी का नहीं. चैतन्य महाप्रभु सिखलाए हैं, और उसी गंगा तट पर लक्ष्मी प्रिया से भी महाप्रभु का मुलाकात हुआ, और बाद में लक्ष्मी प्रिया से महाप्रभु का शादी हुआ था. तो वही प्रसंग बड़ा सुंदर है, लेकिन समय अभाव चलते हम यहीं विराम करेंगे. धन्यवाद. हरे कृष्ण. कोई प्रश्न है? ये तपस कहां गया? इसका एक प्रश्न है, डेली कथा के बाद पूछता है, आज ही नहीं पूछ रहा है, फिर कथा के बाद पूछेगा. बोलो, माइक दो इसको, इसको शर्म लगता है प्रश्न पूछने में, बाद में पूछता है करके. एनीवे, इसका प्रश्न मुझे याद है. इसका प्रश्न यह है कि उस दिन बताया गया था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में 5 चिन्ह देखा गया था. आप लोगों को याद है 5 चिन्ह कौन कौन है, बताइए तो. शंख, चक्र, गदा, ध्वज और मीन, मछली. तो इनका प्रश्न था, शंख, चक्र, गदा और ध्वजा तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन मछली क्यों? इनका कहने का मतलब कि चेतन महाप्रभु बंगाल में आए थे, इसलिए मछली उनके पैर में हो गई थी, कि बंगाली लोग प्राय मछली खाते हैं, यही बात है. ऐसी बात नहीं, मैं किसी वैष्णव से सुना था इसी प्रसंग में, ऐसा ही प्रश्न हुआ था. तो आपको नाम, आपको पता होगा कि इसी के तुरंत बाद चेतन महाप्रभु का नामकरण हुआ था,
बीके के
मैं तुम्हें ढूंढ रहा था।
नामकरण हुआ था और नामकरण में उनका नाम रखा गया था विश्वंभर, जो विश्व का भरण पोषण करे। जो रात को सोता है वो भरण पोषण नहीं कर सकता है। भरण पोषण करने का मतलब 24 आवर एजे जगे रहना है? तो मछली जो है ये सिंबल है कि भगवान सबका भरण पोषण करेंगे अपलक भाव से। मछली एक ऐसी प्राणी है जो कभी सोती नहीं है, उसका आंख कभी बंद नहीं होता है। उसके पास ये नहीं है, जिसके पास आईब्रो हो नहीं है वो सो नहीं पाएगा। कल तो अपना सेविंग कर लेना, कल तुम्हारा नींद खराब हो जाएगा। आईब्रो रहेगा तभी नींद आएगी। आईब्रो एक बार पेपर में पढ़ा था कि आजकल स्त्रियां ब्यूटी पार्लर में जाकर के आईब्रो है वो कटाती है, छोटा कराती है, उनको नींद नहीं आता है बाद में, फिर दवा लेना पड़ता है। तो ये आईब्रो जो है आंख का ये पलक, ये नीचे वाला पलक या ये वाला ये जो बाल है, इससे निद्रा देवी को आकर्षण करता है।